मेंटेन रखेंगे। आपको पता ही है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस थे, खासतौर पर स्मॉल बिजनेसेस, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि हमारे चूंकि जो है अब सस्टेनेबल नहीं रहे हैं कोविड के बीच में, तो गवर्नमेंट ने ये ऑफर की थी और तकरीबन 898,271 बिजनेसेस जो थे उनको तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे $49.2 बिलियन के करीब ड्यूरिंग पैंडेमिक फॉर रिलीफ। और इन्होंने फिर इनिशियली तो ऑफर किया था $40,000 स्मॉल बिजनेसेस और एनजीओस को, और फिर उसको एक्सपैंड किया था, 60,000 इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए थे। और फिर उन्होंने कहा था जी कि जिस वक्त आपका यानी कि बिजनेस चल जाए तो फिर आपको वापस करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं जी कि अगर आप वापस नहीं कर सकते हैं या आपको रीस्केड्यूल अपने डेट्स करने हैं तो आप फिर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ बात करें और देखें आपको हेल्प कैसे मिल सकता है। अलबत्ता वो कहते हैं जी कि ये जो रीपेमेंट डेडलाइन है उसके लिए आप अप्लाई वैसे कर सकते हैं रीफाइनेंसिंग के लिए और पार्शियल फॉरगिवनेस के लिए। तो
वन थर्ड आपको जो है वो फॉरगिवनेस मिल सकती है
जी, जी, जी,
अगर आप जो है
विद इन डेट दे दें,
आज टुडे वाज द लास्ट डे। अगेन इसमें मैं ऐड करता चलूं कि अगर फॉर एनी रीजन आप ना दे सके तो गवर्नमेंट आपको 3 साल का जो है उस पर लोन दे देगी उसी का
2026 तक।
3 साल का आपके साथ लोन होगा और लोन पे आपको 5% इंटरेस्ट एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर आप गवर्नमेंट से ये कह देंगे भाई नहीं मैं आई एम स्टिल टॉकिंग टू माय ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सो यस यू कैन डू दैट एंड यू हैव टाइम टिल 28th of March, और उस वक्त फिर आप जो अपनी बैंक है उससे पैसा लेके इनको दे दीजिएगा और यू स्टिल आर एलिजिबल फॉर 1/3 ऑफ।
जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, आज एक स्टडी आई है और उसके ऊपर बात करते हुए जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो हम स्टडी परमिट्स देते थे इंडियन स्टूडेंट्स को, ये पिछले साल से काफी नीचे आ गए हैं जब से कि इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रो शुरू हो गई है। ये जिस वक्त ट्रूडो साहब ने कहा था कि हमारे पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि हरदीप सिंह निज्जर जो सरी के रहने वाले थे सिख लीडर, उनको मारा गया है अलेजली ऑन द ऑर्डर्स ऑफ यू नो सम इंडियन ऑफिशियल्स, तो उसकी वजह से ये जो ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। अब इसके ऊपर बात करते हुए मार्क मिलर साहब ने कहा है कि ये टाइज जो हमारे खराब हुए हैं उससे जो हमारा एबिलिटी था टू प्रोसेस एप्लीकेशंस वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, बल्कि हाफ हो गया है। और उसकी वजह से अब क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर तो इंडियन पंजाबी स्टूडेंट्स ही आते थे, तो अब वो जो है दे आर, अब ये नहीं मुझे पता कितना ये इसमें ट्रूथ है, लेकिन वो कहते हैं जी अब दे आर लुकिंग फॉर सम अदर कंट्रीज एज वेल। लेकिन कैनेडा के अंदर 86% ड्रॉप आया है in issuing student and study visas to Indians and the period was the fourth quarter of 2023 compared to the third quarter of 2023 last year ka from 108,940 से 14,910 पे ये एप्लीकेशन आ रहे हैं। वो जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी एबिलिटी नहीं रही थी कि हम कर सके बिकॉज जो डिस्प्यूट चल रहा था और जो फिर एक दूसरे के ऊपर जो सख्तियां कर दी थी इन्होंने। गुर सुप्रामिनियम काउंसलर जो हैं ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन ओरवा, उन्होंने कहा जी कि स्टूडेंट्स यूके अब ऑप्शंस देख रहे हैं अदर देन कनाडा, तो उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि ये डिप्लोमेटिक रो है बल्कि कनाडा के अंदर जो है बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं टीचिंग की या रहने की रेजिडेंशियल और टीचिंग, वो फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और इंडियंस जो हैं वो कहते हैं जी बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आते हैं स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स जो हैं यहां पे पढ़ने के लिए, और ये कहते हैं जी कि तकरीबन जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसका यहां पे 41% जो होता है ये इंडियन पंजाबी स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो कहते हैं जी कि इसमें जो दिए गए थे परमिट्स 2022 में वो काफी ज्यादा थे कंपेयर टू 2023 लड़ाई की वजह से, लेकिन जो कनेडियन इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं उनका तो आपको पता ही है कि सहारा ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, नॉट सो मच इंडियन स्टूडेंट्स बट बल्कि सारे ही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं कनाडा की यूनिवर्सिटियों को तकरीबन 22 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो है वो हर साल पे करते हैं और उसी के ऊपर जो है यूनिवर्सिटीज चलती हैं, वरना फिर उनको जाहिर है कि बहुत बड़े ग्रांट्स लेने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। और आपको पता ही आपके बच्चे जिनके यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि आपके बच्चों की फीस क्या है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसकी फीस क्या है, इसीलिए हमारे डोमेस्टिक बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स उनके ऊपर प्रेफर किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, चाहे उनके नंबर जो है वो कम भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज। तो जनाब ये जो है आज इन्होंने बताया और उन्होंने बड़ी चिंता दिखाई है कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो आते रहने चाहिए। आज जो एक अच्छी खबर है कि ऑन्टेरियो गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड कर रही है हेजल मैकेलियन एलआरटी जो है फर्दर इन ब्रैम्पटन एंड मिसेस सागा, और एक लेटर जो है मेट्रोलिंक सीईओ फिल वर्स्टन को लिखा है ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर प्रभमीत सरकारिया ने, और उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर अब डाउनटाउन मिसेस सागा और डाउनटाउन ब्रैम्पटन जो है उसको भी लूप एक्सटेंशन में का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो सारी हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं ये प्रीमियर साहब ने दी हैं, और वो कहते हैं जी कि पील जो है वो सबसे ज्यादा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है और हम यहां पर हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अभी जो करंट 18 किलोमीटर लाइन है वो अभी खुल जाएगी कुछ अरसे में, लेकिन ये और ये जो लाइन है ये कनेक्ट करेगी पोर्ट क्रेडिट गो स्टेशन इन मिसिसागा टू ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल में, लेकिन और इसमें 19 स्टॉप्स हैं अभी तक। लेकिन अब जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भाई इसमें और भी आप जो है लूप्स लेकर आए ताकि ये कनेक्ट करे मिसिसागा और ब्रैम्पटन के और एरिया यानी कि डाउनटाउन को बेसिकली कोर डाउनटाउन में। एक अनरिलेटेड सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चल रही थी क्वींस पार्क के ऊपर, जिसके ऊपर बॉनी क्रॉम्बी जो कि कभी मिसिसागा की ब्रैम्पटन मेयर थी वो बात कर रही थी कि हम तो चाहते थे और ये था भी जो ओरिजिनल एलआरटी था उसका हिस्सा था ये जो थी मिसिसागा, लेकिन फिर फोर्ड गवर्नमेंट ने आके इसको ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था जी कॉस्ट जो है बहुत हाई हो गए हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने फिर से इस चीज को किया। और इसके अलावा ब्रैम्पटन के मेयर जो पैट्रिक ब्राउन है वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कहते हैं जी मैं तो वेट ही नहीं कर सकता कि कब ये जो है सारी की सारी जो है एलआरटी ये आ जाए हमारे डाउनटाउन ब्रैम्पटन में, तो जाहिर है कि लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। है जी
हाँ, मगर बॉनी क्रॉम्बी का आई कैन अंडरस्टैंड शी डज़ वांट टू गिव द क्रेडिट टू हिम,
यानी कि हाँ बिल्कुल
दूसरी पार्टी की है ना, तो सेम लेवल पे
जाहिर है कि वो अब तो लिबरल पार्टी की है ना।
एग्जैक्टली,
तो चलो ठीक है, अब तुमने ये कह दिया है कि जी ठीक है उसके प्लान में नहीं था, अब तो प्लान में आ गया ना, अब तो प्लान में आ गया, तो उसको थैंक यू बोलो भाई, तो ठीक है ना, उसने समझ लिया बात कि नहीं लोगों को वाकई ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होनी चाहिए उनके पास अच्छी। ऐसे आप देख लेना कि हमने कितनी दफा जिक्र किया है यहां पर जो इंग्लैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्यूब सिस्टम जो है उनका, लोग जो है दो दो तीन तीन जॉब्स कर रहे हैं और वो क्या करते हैं कि सुबह के लिए जो जॉब ली उसमें हाँ ट्यूब्स के अंदर जो है वो सारे अपने कपड़े चेंज किए, मेकअप्स किए, सारा कुछ किया उसी के अंदर, फिर वहीं से निकल के जो है अपने दूसरे जॉब पे चले गए, वहीं से फिर अगर उस जॉब से अगर डायरेक्टली क्लब में जाना या क्या, फिर ट्यूब में बैठ के वो कपड़े चेंज कर रहे होते हैं क्लबिंग के लिए और वो करके फिर वहां से, तो इतना अच्छा सिस्टम है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में वो चलती हैं, इतनी एफिशिएंट हैं, हर जो है सिटी के कोने को उन्होंने यानी कि कनेक्ट किया
जोड़ दिया हुआ है।
हाँ जी, तो ऐसे है। पुलिस जो है जी यॉर्क रीजन के अंदर वो एक आदमी को अब ढूंढ रही है और वो कह रही है जी कि इसने दो ट्रक्स जो है इसको जलाने की कोशिश की है, ये जो कमर्शियल यार्ड का एरिया था ये ट्रक्स का यहां पे न्यू कर्क एंड क्रॉस्बी रोड के पास यॉन्ग स्ट्रीट एंड एल्गन मिल्स रोड स्ट्रीट के ऊपर, जिसमें देखा गया कि इसने एक जो है कैनिस्टर कुछ फेंका है, कोई कंटेनर फेंका है जिसके अंदर जाहिर है कि इन्फ्लेमेबल मटीरियल होगा और ट्रक्स के बीच में जिसकी वजह से इनको आग लग गई है। वो कहा जाता है जी कि जिस वक्त पुलिस आई उस वक्त तक आग काफी भड़क गई हुई थी, आग को बुझाया तो गया और इर्द गिर्द घूम के देखा गया कि कोई आदमी वगैरह तो नहीं है, तो कोई इंजरीज जो है वो भी नहीं है, लेकिन अभी तक समझ नहीं आई कि इसने ऐसा क्यों किया है और ट्रक्स के साथ ही क्यों किया है। पुलिस कह रही है कि इस आदमी का जो सस्पेक्ट है ये 5'8" है, मेल है, हैवी बिल्ट है इसकी, ब्लैक इसने जैकेट पहनी हुई है विद हुड यानी कि हुडी है, ये ब्लैक हुडी है, खाकी पैंट्स हैं और फेस इसके के ऊपर जो है व्हाइट मास्क है। तो पुलिस कह रही है कि अगर किसी को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो दे कैन कॉल देम एट 1-866-876-5423 एक्सटेंशन 7241 या कि क्राइम स्टॉपर्स को आप बता सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने जनाब आज एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है और उन्होंने कहा है कि परमानेंट सीज फायर तो इसराइल और हमास की वॉर में होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमास नहीं होना चाहिए। ये जो थी आपको पता ही है कि जो साउथ अफ्रीका था उसने एक पिटीशन डाली थी इसराइल के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसके अगेंस्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और बल्कि उनका तो आज एक प्रिलिमिनरी जो है वो जजमेंट भी आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वाकई अभी तो ये चलती रहेगी ये जो इसके ऊपर प्रोसीडिंग है, लेकिन हमें वाकई मिले हैं ऐसे कुछ कि जिसके अंदर वायलेंस शो की गई है, तो हम इनको फौरन कहते हैं कि ये वायलेंस जो है बंद की जाए। ये जो वॉर है इसने काफी यूरोपियन यूनियन को भी और पोलिटिकल ग्रुप्स जो है यूरोप के अंदर उनको काफी डिवाइड किया हुआ है और वो परमानेंट सीज फायर की जो है बात कर रहे हैं। आज जब ये रेजोल्यूशन यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर आया तो इसको अडॉप्ट किया गया 312 वोट्स इन फेवर, 131 अगेंस्ट, 72 ने एब्सटेन इसके अंदर से किया था और वैसे तो यूरोपियन यूनियन की जो लिस्ट है उसके ऊपर टेररिस्टों के जो ग्रुप है उसके अंदर हमास का भी नाम है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वहां पे जो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन डिटेरियोरेट होती जा रही है गाजा में, उसके लिए जो है काम करने की जरूरत है और एक पैलेस्टीनियन स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काम करने की भी जरूरत है। जो उन्होंने कहा जी कि नतन्याहू साहब जो है इस बात को अब मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा मिलिट्री ऑफेंसिव जो है वो जारी रहेगा गाजा के अंदर और हम किसी पैलेस्टीनियन स्टेट को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर यहां पे पैलेस्टीनियन स्टेट रहेगी तो वो लॉन्चिंग पैड के तौर पे हमास यूज करेगा टू अटैक ऑन इसराइल और हमको पूरा कंट्रोल चाहिए पूरे एंटायर टेरिटरी पे टिल द वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। और अगर आप कहते हैं जी कि ये दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। यानी तुसी देखो किसी और दा मुल्क उस दे विच घुस गए, अपना मुल्क बना लिया, हूं उसको कहते हैं जी पैलेस्टाइन हमको रखना ही नहीं है, पैलेस्टाइन खत्म करो, पूरे के पूरे को हम इसराइल बनाएंगे। हे हेकड़ी देखें आप जरा, और आप हेजेमनी देखें जरा इनकी, और मतलब सारी दुनिया जो है वो इनके जो है कुछ इनको कह नहीं रही है। ठीक है जी, अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक आज जो बहुत सारे मिलिट्री और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने बहुत ज्यादा वार्निंग दी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो कॉन्स्टेंटली आप हुथीज के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और इनको जो आपने अब रिसेंटली डेजिग्नेट कर दिया है अपने स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप के अंडर, तो ये बहुत ही जो है वो गैर फायदेमंद साबित होगा। आपको बताइए कि जनवरी 2021 में जब बाइडन साहब आए थे तो उन्होंने दो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको के हम ट्रंप साहब टेररिस्ट कहते थे उनको हटा लिया था और उनमें से एक हुथीज भी थे। उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने कहा था जी क्योंकि यमन के अंदर बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है तो इसलिए हमको जो है इसको हटाना पड़ेगा वरना ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंचेगी। आज यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स हैं और यूएस लॉ मेकर्स हैं उन्होंने वार्न किया है कि अगर आपने इसको टेररिस्ट डेजिग्नेशन दिया तो एड जो है फिर से एक दफा रुक जाएगी, यमन के अंदर नहीं जाएगी। और आज लोग कहते हैं जी कि पहले तो 2021 में उन्होंने कहा कि हम उसको निकाल रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, आज तीन साल के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फिर से जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लेबल के अंदर हुतीस को डाल दिया है। अलबत्ता ये जो आप जितना पुश करते जाएंगे, पोलिटिकल एनालिस्ट और राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं कि जितना हुतीस को आप पुश करेंगे उतने ही इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। एक ने कहा कि जी आप यूएस जो है वो ये रिफ्यूज कर रहा है टू रिकग्नाइज कि ये जो जितने भी रिसेंट हुती अटैक्स हुए हैं दे आर ऑल लिंक्ड टू वॉर इन गाजा, तो इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने अपने आप को एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है और उसके पास कुछ अच्छी पॉलिसी ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। इनकी जो पॉलिसीज हैं वो और ज्यादा जो हैं इनको एनकरेज करेंगी हुथीज को, ये और ज्यादा लोगों को रेडिकल करेंगे और ये और ज्यादा जो है रिक्रूट करेंगे लोगों को, उसकी वजह से और ज्यादा हमले जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जो यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट हैं यूरोप के अमरीका के उसके ऊपर ये और ज्यादा हमले करेंगे। एक और जो एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट उन्होंने कहा जी कि ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ये आग के साथ खेल रही है, तो इसको पता नहीं है कि ये हुतीज किस टाइप के हैं तो इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये गलत तरफ जो है ये बिल्कुल चल रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जी सर्जे लेवरोव, उन्होंने आज कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया यूएस का प्रपोजल टू रिज्यूम डायलॉग ऑन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल। उन्होंने कहा जी कि एक तरफ ये मिलिटरली सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को और दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं कि हम जो है इनके साथ ये न्यूक्लियर आर्म्स डील जो है इसको साइन करें, आर्म्स कंट्रोल डील जो है वो साइन करें, तो ये बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आज बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए वेस्ट के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि ग्लोबल सिक्योरिटी को रिस्क कर रहे हैं और जो है ये कॉन्स्टेंटली इनका जो असला है उसकी वजह से जो यूक्रेन है वो रशियन टेरिटरी के ऊपर अटैक कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि जो मर्जी भी वेस्ट करे और अपना देता रहे सपोर्ट देता रहे, हम जब तक अपने गोल्स अचीव नहीं करेंगे हम वहां से नहीं हटेंगे। वो कहते हैं जी कि यूएस को सबसे पहले अपनी जो पॉलिसी है उसको रिवाइज करना पड़ेगा टुवर्ड्स रशिया, उसके बाद हम उनके साथ बातचीत के लिए बैठेंगे, लेकिन जिस वक्त तक वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं शो करेंगे हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी यूएसए की ये जो डिमांड है सर्जे लेवरोव साहब ने कहा कि वो इंतहाई इनडिसेंट है और इन्होंने एक हाइब्रिड वॉर रशिया के अगेंस्ट की हुई है और इनका मकसद यह है कि ये फिर से एक दफा जो है वो इंस्पेक्टर्स भेज सके हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, जिसमें कि हमको उनकी जो है वो बदनीति यानी कि मैलिशियस इंटेंट जो है वो हमको नजर आता है और ये रशिया के सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है, तो हम इसको डिनाउंस करते हैं, हम इसको इसके साथ जो है वो चल नहीं सकते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में आज बेतहाशा सर्दी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद ह्यूज किस्म की जो है वहां पे पब्लिक स्ट्राइक जो है वो चल रही है, जिसके के अंडर आज स्कूल्स बिल्कुल शटडाउन किए थे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सब बंद थे और ट्रांसपोर्ट जो थी वो कंप्लीट हॉल्ट के ऊपर थी। और एक वार्निंग जारी की गई थी कि आप सिर्फ उसी वक्त ट्रैवल करें अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है, वरना घरों के अंदर बैठे। ये यूनियन जो है ये रिप्रेजेंट करती है 170,000 ऑफ 225,000 पब्लिक सेक्टर वर्कर्स, और ये जो है इन्होंने 24 आवर स्ट्राइक जो है उसको बुलाया हुआ था, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा पे इंक्रीज भी नहीं कर रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है वो बेतहाशा ऊपर चली गई है। पहले तो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो था अलायंस था यूके की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो कहते हैं जी जब से ये अलायंस खत्म हुआ है, ये जो पावर शेयरिंग जिसमें होती थी वो जब खत्म हुआ है 2022 में, उसके बाद से जो है लोगों की हालत काफी खराब है। वर्कर्स जो थे आज पिकेट लाइन पे देखे गए आउटसाइड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बस डिपोज। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो कहते हैं जी के आपने को हम बड़े अरसे से कहा हुआ है कि ये एंड करें आप 2 ईयर प्रोटेस्ट ओवर पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड रूल्स जो है, और इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया डीयूपी और यूके की गवर्नमेंट को, यूके की गवर्नमेंट को इसलिए कि उसने कहा था कि हम फंड्स देंगे ब्रेक्सिट के बाद, लेकिन उन्होंने फंड्स भी नहीं दिए और उसकी वजह से इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जबकि यूके के अंदर लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो वो कहते हैं जी कि चाहे जितना मर्जी फ्रिजिड वेदर रहेगा हम आके यहां पे स्ट्राइक जो है वो करते रहेंगे। पाकिस्तान के जो अब जो स्ट्राइक हुआ है ईरान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, उस पर आज दुनिया ने काफी रिएक्ट किया है और उसके ऊपर काफी डिफरेंट लोगों ने जो है काफी डिफरेंट बातें की हैं। यूएस जो है उन्होंने बड़ा कंडेम किया है ईरान को कि तुमने क्यों पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को खराब किया है, और पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि इराक और सीरिया में भी तुम अटैक्स कर रहे हो। मैथ्यू मिलर स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम इन अटैक्स को कंडेम करते हैं, हम देख रहे हैं कि ईरान कॉन्स्टेंटली जो है जो बॉर्डर की तीन उसकी उसके नेबर्स हैं उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है कुछ दिनों से, और ये जो है एक तरफ तो ईरान फंड कर रहा है टेररिज्म को, रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी ला रहा है, और दूसरी तरफ वो कहता है जी कि हम काउंटर टेररिज्म के एक्शंस कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। इंडियन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन श्री रणधीर जायसवाल जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये मामला वैसे तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन इंडिया का बहुत ही जो है क्लियर स्टैंस है कि हम बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग हमारी पोजीशन है ऑन जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी कंट्री अगर ये इस तरह का एक्शन लेती है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में लेती है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने कहा जी कि ईरान इराक और पाकिस्तान जो है उनको कुछ रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए और कॉमन सेंस उनके बीच में आनी चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये फ्रेंडशिप ब्रदरहुड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसके अलावा सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसकी भी रिस्पेक्ट आनी चाहिए। तुर्की ने दोनों ही ईरान और पाकिस्तान को कहा है कि आप फौरन से पहले जो है वो काम रिस्टोर करें। इसके अलावा तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी कहा है कि दोनों कंट्रीज जो हैं दे शुड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि दोनों को मैक्सिमम रेस्ट्रेंट शो करने की जरूरत है, इनके बीच में जो भी कोई डिफरेंसेज हैं वो डिप्लोमेसी से खत्म करें और ये उन लोगों के हाथ में खेलने की कोशिश न करें जो इनके बीच में केओस क्रिएट करना चाहता है। यानी कि जाहिर है उन्होंने कहा जी कि टेररिस्टों की आप मर्जी पे मत चलो, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आपके बीच में लड़ाई होए। रशिया ने कहा इसके अलावा जी कि दोनों ही जो है मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, तो ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एससीओ की जो कंट्रीज हैं फ्रेंडली उनके बीच में इस तरह की लड़ाई है। वो कहते हैं जी एनी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो आप किसी और मुल्क में जाके करना चाहते हैं ऑन सॉवरन टेरिटोरी, उसके लिए आपका उस कंट्री के साथ अग्रीमेंट एंड कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि आप उसमें अटैक करें। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है उसने भी कहा है जी कि ये अगर चीज और बढ़ गई ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी तो इससे मिडिल ईस्ट के अंदर और ज्यादा वायलेंस फैलेगी। उन्होंने कहा है जी कि ये जो अटैक्स पाकिस्तान ईरान इराक सीरिया ये सब में हो रहे हैं इनको हम बड़े कंसर्न से देख रहे हैं और ये एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी को वायलेट किया जा रहा है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया जा रहा है इसको नहीं करना चाहिए और इस तरह अगर चलता रहेगा तो ये चीजों को डिस्टेबिलाइज करेगा। इसके अलावा चाइना जो है जी उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स वुमन जो है माओ निंग उन्होंने भी कहा है कि चाइना भी विलिंग है पाकिस्तान के साथ और ईरान के साथ बैठ के एक मीडिएशन करने के लिए, अगर वो दोनों जो हैं वो चाहते हैं। और उन्होंने वैसे दोनों कंट्रीज को कहा है चाइना ने कि आप एक्सरसाइज करें काम एंड रिस्ट्रेंट्स और टेंशन जो है उसको और ज्यादा बढ़ावा मत दें। चाइना ने आज कहा कि हम अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने को तैयार हैं आपके साथ डीएस्केलेट इस सिचुएशन को करने के लिए। इसके अलावा जो चाइनीज काउंसिल जनरल हैं कराची में यांग युंग डोंग, उन्होंने भी कहा है कि चाइना जो है विलिंग है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपके बीच में दोस्तियां करा सकते हैं। आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली भी चाइना ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था, अभी जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो बहुत ज्यादा लड़ाइयां रहती थी हर वक्त, उनको भी उन्होंने जो है रिजॉल्व किया था। और एससीओ के ऊपर उनकी हमेशा चाइना की ये होती है, कोशिश होती है कि जितने एससीओ के जो मेंबर्स हैं खासतौर पर उनके बीच में दोस्ती बनी रहे। तो जो है ये आज ऐसे हुआ है। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट। आपको पता ही है कि ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे है और ये जो है दो लोकेशंस पे हैं, इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं एक तो डिक्सी रोड मिसिसागा में है और इस यहां पे नंबर है 9052323663 और इसके अलावा ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, इनका नंबर है जी 9052262294। अगर आपको अच्छे खाना खाने हैं तो आप प्रोफेसर चिट्टा साहब को कॉल कर सकते हैं। और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, यहां पे 1400 लोगों की फैसिलिटी है, 32 रूम लग्जरी होटल है और आप अपना बिजनेस का और अपनी कोई कंपनी का अपनी फर्म का कोई अगर इवेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही आइडली लोकेटेड हैं एट 2935 व्यू रोड मिसिसागा पे, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823 के ऊपर। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो हमने आपको बताया ही था कि डेवोस पहुंचे हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए, तो वहां पे इनकी मुलाकात जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुलिया के साथ हुई है और उसमें ये देखा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज जो थे पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, इन्होंने बात की थी आपस में बैठ के तो, लेकिन जिस वक्त ये इधर मिले हैं डेवोस में मिले हैं तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि अब्दुलिया साहब जो हैं उन्होंने काकड़ साहब के साथ जो एक दिन जो ईरान ने स्ट्राइक की थी उससे पहले ये बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं बताया कि हमारा कंट्री जो है आपके ऊपर अटैक करने का सोच रहा है। तो काकड़ साहब वैसे अपना जो अब ये सारा कुछ जो विजिट है ये कट शॉर्ट करके वापस मुल्क में आ गए हैं, वरना उन्होंने वहां पे जनवरी 22 तक रहना था। ईरान जो है वो बिल्कुल कहते जी अब्दुलिया साहब के साथ जो मीटिंग थी उसमें बिल्कुल टाइट लिप्ट रहा, उसने बिल्कुल काकड़ साहब को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा जी के जो बाद में कि जी हां हमने आज जो है अटैक किया पाकिस्तान के, लेकिन सिर्फ जैश अल अदल ये जो टेररिस्ट ग्रुप है इसके ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसके ताल्लुकात जो है अलेजली जाके इसके लिंक्स मिलते हैं इसराइल के साथ। जुंदुल्ला जो कि अलकायदा की अफिलियट है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ये हिस्सा है और उन्होंने कहा जी कि इसके जो फाउंडर हैं अब्दुल मालिक रेगी, उसको ईरान ने 2010 में पकड़ा था और एग्जीक्यूट किया था, लेकिन उसमें ईरान कहता है जी कि हमें पाकिस्तान की हेल्प मिली थी। अब जब इधर इन दोनों की मुलाकातें हुई तो उसके बाद जब ये लोग बाहर निकले उस मीटिंग से तो अब्दुलिया साहब से पूछा वहां पे जर्नलिस्टों ने कि भाई आप जो पाकिस्तान के साथ ये जो अटैक किया उसमें तो आपकी ज्यादा खराब हो सकती है जो ताल्लुकात हैं। अब्दुलिया साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान एक हमारा दोस्ताना मुल्क है और हमने ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया बल्कि टेररिस्टों पर किया है और हमें पता है कि न सिर्फ जैश अल अदल बल्कि और भी कुछ जो है टेररिस्ट ग्रुप और जिसके ऊपर उन्होंने किसी पाकिस्तानी को इल्जाम नहीं दिया, उन्होंने कहा दे आर नॉट पाकिस्तानी जो है वो, हालांकि उसके अंदर और कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स भी शामिल हैं, पर उन्होंने कहा जी कि उधर जो एक ईरानी बैठा हुआ है टेररिस्ट ग्रुप उसको हम जो है खत्म करना चाहते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं। आपको पता ही है कि पिछले कुछ अरसे से ईरान जो है काफी ज्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करता था और उसको कहता था कि भाई आपकी जो टेरिटरी है उससे हमारे ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं तो इनको रोकने की जरूरत है। बहरहाल पाकिस्तान फिर जो है वो करता था इंटेल शेयरिंग करते थे और बहुत सारे इन्होंने मिलकर लोगों को टेररिस्टों को पकड़ा था और मारा था। इस वक्त समझ नहीं आई है कि ईरान ने ये इस तरह का यूनिलैटरल एक्शन क्यों लिया और पाकिस्तान के अंदर जो है क्यों अटैक ऐसे कर दिया, जबकि पहले वो पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान को कहता था कि भाई इनको रोकें और फिर पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर उनकी खोज लगाते थे और उनको मारते थे। तो अब ये जो बात है ये है सोचने की। तो कि चीजें ज्यादा एक्सकलेट कर गई हैं, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे किया? क्योंकि इरानियंस जो हैं अदरवाइज बड़े ही कहते हैं ना धीमे सुझाव के लोग हैं, बहुत धीमे मिजाज के लोग हैं वो काफी। पाकिस्तान के अंदर जो है अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो उसके ऊपर आज बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने टिप्पणियां दी हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है और लोगों की जो सेफ्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे तो ये लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने बिफिटिंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी स्टेप्स जो है वो लिए। आज अपने एक्स पे उन्होंने कहा जी कि लेकिन दोनों नेबरिंग कंट्रीज को जो है पीस जो है वो सीक करना चाहिए, लेकिन एवरीबडी हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स एज वेल। सेनेटर शेरी रहमान ने इस मौके के ऊपर बोला जी कि ये ईरान का अनप्रोवोक्ड अटैक जो था उसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा थॉटफुल रिस्पांस था, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान ने दो दिन के बाद अटैक किया, फौरन नहीं किया। हिना रब्बानी खर ने कहा है जी कि ये जो ईरान का एक्शन है उस पर मैं बहुत शॉक्ड हो गई हूं, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हमारा जो है 900 किलोमीटर का बॉर्डर भी है, और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से अटैक करना इरेशनल है, एस्केलेटरी और इलीगल है, और जिस किसी ने भी ईरान के अंदर ये ऑर्डर दिया पाकिस्तान के अंदर आके हमला करने का कि उसने जो है सही तरह से सोचा नहीं है इसके बारे में। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने इस मौके पे बात करते हुए कहा जी कि ये सिचुएशन को ज्यादा खराब करने के बजाय ईरान के साथ जो हमारे टाइज हैं उसको बनाए रखने की जरूरत है। दोनों जो हैं जिस वक्त हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो हमारे जो ताल्लुकात थे बहुत अच्छे थे ईरान के साथ, और उन्होंने कहा जी कि ये जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं वो बल्कि ईरान में भी चल रही हैं, और वो सारे टेररिस्ट हैं और उनको ज्वाइंटली मिलकर जो है उनसे निपटा जाना चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं फॉर्मर एजाज अहमद चौधरी, उन्होंने भी कहा जी कि पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि उसकी एबिलिटी है कि वो रिटेलिएट कर सकता है फॉर अटैक ऑन इट्स सॉयल, और जिस वक्त ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान ने फौरन इम्पेशेंस नहीं दिखाई, बड़ा पेशेंटली उसके ऊपर सोचा और फिर उसने अटैक किया, लेकिन लड़ाई को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं जी आज उन्होंने अपनी पहली मेडन अपीयरेंस दी है इलेक्शन से रिलेटेड हफीजाबाद के एरिया में, और उन्होंने कहा जी कि उनका एक ही मकसद है कि वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाए, और जो है अगर मेरी गवर्नमेंट रहती और मेरी गवर्नमेंट्स को बार 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 ना हटाया जाता और 5 साल मुझे पूरे किए जाने देते तो आज पाकिस्तान का जो है वो प्रॉस्परस कंट्रीज की लिस्ट में खड़ा होता। और वो कहते हैं जी कि मुझे सिर्फ इस चीज के ऊपर निकाला कि मैंने अपने बेटे से सैलरी नहीं ली थी, अगर मैं अभी तक हुकूमत कर रहा होता तो इस गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर तमाम यूथ जो है उनके पास जॉब्स होती, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई होती, फार्मर्स जो हैं वो प्रॉस्परस होते और हमारे पावर टैरिफ्स जो हैं वो बिल्कुल बढ़ाए ना जाते और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इन्फ्लेशन ना होता। उन्होंने शुक्रिया अदा किया हाफिजाबाद के लोगों को, उन्होंने कहा कि जी आप बड़े फ्रेंडली लोग हैं सो थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी, और मैं हाफिजाबाद को भी कराची की तरह का सॉरी लाहौर की तरह का बनाऊंगा और यहां पर मोटरवेज के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। उन्होंने कहा जी कि हम जो है यहां पर मुल्क के अंदर हाफिजाबाद में तो है ही लेकिन पूरे मुल्क के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं। आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 9 साल तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहे हैं, वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की जॉब पे आए थे 1990 में, फिर 1997, फिर 2013 में, लेकिन उनको कभी भी उनकी जो टेन्योर थी वो पूरी नहीं करने दी गई थी, तो आज उस चीज का सारा उन्होंने जिक्र किया। इमरान खान साहब जो हैं आज फिर अदालत जो लगाई गई है अडयाला जेल में उसमें रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मैं अब थैंक गॉड मेरे पास सेलफोन नहीं है तो मैं अब उसका स्लेव नहीं रहा और मैं अब रिलैक्स करता हूं और एक्सरसाइज करता हूं। तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा जी कि आप अपना प्लान सी जो आपने कल कहा था कि हमारे पास है उसका बताएं, उन्होंने कहा जी मैं प्लान सी बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि जब भी कभी हम अपने प्लान्स बताते हैं तो एक वीगो ट्रक जो है वो आता है और वो लोगों को उठा के ले जाता है और फिर बाद में हमें पता चलता है जी उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया, तो ये बड़े सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हो गए हैं तो इसलिए मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ईरान के अटैक के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 18 महीने में बिल्कुल फेल हो गई है, हमने अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान और ईरान दोनों के साथ बर्बाद कर दिए हैं, और जो है वो बीबी जरदारी जो के थे फॉरेन मिनिस्टर थे पीडीएम की गवर्नमेंट में, उन्होंने एक भी विजिट जो है वो अफगानिस्तान का नहीं किया। अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको ट्रेड करना है सेंट्रल एशिया के साथ तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे, और हम कब तक लड़ते रहेंगे, क्या हमने सारी जिंदगी लड़ाई करते रहना है? और फिर उन्होंने कुरान की एक वर्स पढ़ी और उन्होंने कहा जी कि कोई सोसाइटी जो है वो जस्टिस के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा इनजस्टिस पीटीआई की गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको स्मैश किया जा रहा है, उसको जो है उसका पोल सिंबल नहीं दिया गया, हमारे जो कैंडिडेट्स लड़ना भी चाहते हैं उनको बहुत ही गंदे किस्म के जो हैं इलेक्शन सिंबल्स दिए जा रहे हैं और जो है मेरे ऊपर बड़े सवाल हैं। लेकिन मरियम नवाज ने और जो है नवाज शरीफ जो फ्लैट्स हैं उनके इंग्लैंड में उनके बारे में कोई सवाल नहीं करता। इसके अलावा मरियम साहिबा ने और जरदारी साहब ने तोशाखाना से गाड़ियां ली थी उन गाड़ियों के बारे में कोई नहीं पूछता है। तो मैं फिर से कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं इनके ऊपर आप थोड़ा गौर करो। ठीक है माजिद भाई,
ठीक हो गया,
ठीक है जी, तुम की गौर कर रहे हो। अच्छा जनाब, पाकिस्तान और दुबई के बीच में, नॉट यूएई, यूएई इज द कंट्री, दुबई स्टेट जो है उसके साथ पाकिस्तान के आज $3 बिलियन के जो हैं कुछ अग्रीमेंट्स हुए हैं और ये अग्रीमेंट्स हैं फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट। इसके अंदर जो है बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, फ्रेट टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। आज इनकी जो ये सारी डील है हुई है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवस में और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, रेलवेज एंड मैरीटाइम अफेयर्स शाहिद अशरफ तरार और दुबई की तरफ से थे चेयरमैन ऑफ पोर्ट्स कस्टम्स एंड फ्री जोन कॉरपोरेशन सुल्तान अहमद बिन सुलेम, इनके बीच में हुई है। डीपी वर्ल्ड जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी एट कस्टम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और इसके अलावा जो है रेलवे बेस्ड जो फ्रेट कॉरिडोर है जो कि रन करेगा कराची पोर्ट से अरेबियन सी तक और पास करेगा फ्रॉम कराची टू पिपरी मार्शली और यार्ड तक। और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट कराची में आएगी और जाहिर है कि उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ भी रहेगा। इस की वजह से ये जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, पाकिस्तान का ख्याल है कि और भी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी क्योंकि यहां पर पोटेंशियल है। तो ये जनाब ह्यूज है क्योंकि डीपी वर्ल्ड, इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ डीपी वर्ल्ड, दुबई को डेजर्ट से उन्होंने जैसे ट्रांसफॉर्म किया है तो आपको पता ही होगा उनकी हिस्ट्री अगर आप जानते हैं। तो जबरदस्त अगर उनकी डील हुई है तो क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान साहब, उन्होंने आज तो बहुत बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि इस दफा तो जो होंगे लोकसभा के इलेक्शंस उसमें से 13 की 13 पूरी ही सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी पंजाब से जीतेगी। वो कहते हैं जी कि पंजाब के लोग जो हैं उन्होंने बार बार ये शो किया है कि वो आम आदमी पार्टी को मोहब्बत करते हैं और वो जो हैं क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। पंजाब ने हमेशा नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो चाहे फ्रीडम स्ट्रगल हो, और उन्होंने हमें इससे पहले भी जो 92 असेंबली सीट्स जीतने में हेल्प की थी तो हम उनके आभारी हैं, यानी कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। और वो कहते हैं जी कि चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ जो एक बीजेपी की एमपी हैं वो भी इस दफा हारेंगी। आपको पता ही है कि एक्ट्रेस जो हैं किरण खेर जो हैं वो बीजेपी की एमपी हैं चंडीगढ़ से, तो वो कहते हैं जी कि इस दफा सब लोग हारेंगे, पूरी की पूरी 13 सीटें आम आदमी पार्टी जो है वो जीतेगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपका अलायंस कांग्रेस के साथ हो सकता है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल और राहुल गांधी जी बड़े क्लोजली लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं सीट शेयरिंग पे, तो उस क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा अवॉइड किया, उस पर बात नहीं की,
डिसाइड नहीं हुआ है,
डिसाइड नहीं हुआ अभी। हाँ जी ठीक है जी। आज द प्रिंट की एक स्टोरी आई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत लंबी है लेकिन उसमें से मैंने थोड़ी सी चीजें आपके लिए नोट की हैं। और ये प्रिंट की स्टोरी लिखी है अनिरुद्ध कानी सेठी ने और वो कहते हैं जी कि इस वक्त तो राम जो है लॉर्ड राम का नाम हर जगह पे लिया जा रहा है और अयोध्या में राम मंदिर खोला जा रहा है और उसने बड़े लोगों को जो है वो डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये आपके लिए आजकल के जमाने में 21st सेंचुरी में तो मुश्किल होगा ये इमेजिन करना कि राम जो है वन ऑफ हिंदुइज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड्स हैं, नहीं है, लेकिन किसी जमाने में ये सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड नहीं थे हिंदुओं के, जो कि आजकल पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा लॉर्ड राम का नाम ले रहे हैं, ये किसी जमाने में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। वो कहते हैं जी कि अगर 1000 साल की हिस्ट्री हम यहां पे ट्रेस करें तो ये बात उस वक्त शुरू हुई थी जिस वक्त ये सारे फॉरेन रूलर्स जो हैं साउथ एशिया से आने शुरू हुए थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त लोग जो थे वो ज्यादातर लॉर्ड शिवा और विष्णु के अंदर जो हैं वो इंटरेस्टेड थे, राम जी के अंदर इंटरेस्ट तो बहुत बाद में लोगों का आया। वो कहते हैं जी चाहे हम संस्कृत का लिटरेचर देखें या टेंपल बिलीफ्स देखें या डिवाइन एनालॉग्स देखें या कि किंग्स जो हमारे थे हिंदू किंग्स जो थे अगर उनकी भी हम चीजें सारे देखें, या कि जो फर्स्ट ग्रेट गॉड्स की बात की गई है विजया अंग्रा के अंदर, तो उसमें कहीं पे भी जो है लॉर्ड राम का इतना बड़ा रोल हमें नजर नहीं आता है। वो कहते हैं जी नॉर्दर्न इंडिया में असल में क्या हुआ था कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आनी शुरू हो गई थी। ये जो सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे थे और जो तुर्किया से लोग आ रहे थे, नॉर्थ इंडियन जो किंग्स हैं वो फिर चाहते थे कि वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करें, तो उन्होंने फिर टेंपल्स बनाने शुरू किए अगेंस्ट ये जो सारे बाहर से लोग आ रहे थे। वो कहते हैं जी कि उस वक्त नॉर्थ इंडिया के जो किंग्स थे, वेगलास थे, चहामनास थे, चौहान्स थे, चलुकियास थे, सोलंकीज थे, जो भी कोई थे, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हम तो राम का अवतार लेके आए हैं, यानी कि हम लॉर्ड राम की शक्ल लेकर आए हैं। और उन्होंने जो ये टर्क्स थे जो ये आ रहे थे उनको डीमंस कहते थे, वो कि ये डीमंस हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर आ रहे हैं और हम राम का अवतार लेकर आए हैं। तो उसके बाद फिर जो है गहा देवला के जो किंग्स थे उन्होंने राम टेम्पल्स बिल्ड करने शुरू किए इन द 12th century। तो फिर जो है राम बिकेम लॉर्ड राम बिकेम द मेजर जो है वो एक लॉर्ड, और अब तो वो एक मेजर पॉलिटिकल फिगर बन के सामने आ रहे हैं जिसको तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके नाम को अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लॉइट करना चाह रही हैं। तो ये जनाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री से लिया हुआ एक आर्टिकल था। अच्छा जनाब, जो हमारे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, ही इज फेसिंग क्रिमिनल टैक्स प्रोसीडिंग्स। ओ माय गॉड, क्यों? क्योंकि ये जिस वक्त म्यूनिख एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे कस्टम वालों ने इनको पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि आप एक नॉन ईयू कंट्री प्रोडक्ट ईयू कंट्री के अंदर कैसे लेकर आ रहे हो, और इनको 3 घंटे के लिए यहां पे डिटेन किया। हुआ क्या है कि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो घड़ी है, इतने कड़ियां खा गई है हर तरफ कड़ी दा रोला है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी जो कि वो एक ऑक्शन में किट्स बुहल ऑस्ट्रिया में सेल करना चाहते हैं वो लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जब कस्टम्स वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई झूठ भी नहीं बोला, सब क्वेश्चंस के सही से जवाब दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं टैक्स भी आपको म्यूनिक में पे करने को तैयार हूं। वहां पे जो टैक्स वाले ऑफिशियल्स थे वो इनको लेकर गए जी एक क्रेडिट कार्ड मशीन के पास, उन्होंने कहा जी इधर आप दें, लेकिन वो चली नहीं 1 घंटा तक। फिर उन्होंने 1 घंटे की कोशिश के बाद बेचारे को सही कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा था वहां पे, फिर इनको जी बैंक लेके चले गए कि भाई तुम अपना जो पैसे हैं एटीएम से ड्रॉ कर लो। फिर वो एटीएम जो था उसके अंदर कैश का लिमिट था, उसमें से वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल नहीं सकते थे और बैंक भी क्लोज था। फिर ये लोग वापस आए, फिर वहां पे एक नया अफसर आया कस्टम्स का, फिर वो एक नई क्रेडिट कार्ड की मशीन लेकर आया, फिर उस पर इन्होंने पैसे दिए, तो जनाब इनकी जान छूटी। पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री जर्मनी, व्हाट इज दिस? ठीक है। और जनाब जावेद अख्तर साहब जो है ही टर्न्ड 79 टुडे, मगर आज वो बहुत गुस्से में नजर आए। उनके लिए एक पार्टी दी थी वहां पे उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, जिसमें कि उनके बेटे फरहान अख्तर और जो फ्रेंड्स हैं बोनी कपूर और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर और ये सारे जो हैं ये जमा हुए हुए थे अनिल कपूर के घर पे। तो जिस वक्त पार्टी वार्टी करने के बाद वो बाहर निकले अपनी बेगम के साथ, शबाना आजमी के साथ, और अपने बच्चे फरहान और जोया के साथ, और वो खड़े हो गए कि भाई मैं आपको, जो वहां पे फोटोग्राफर्स खड़े थे, कि मैं आपको तस्वीर देने को तैयार हूं, आप रुके। लेकिन उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, जावेद साहब हमारी तरफ, जावेद साहब हमारी तरफ। तो उसमें वो बड़े अनॉयड से हो गए और उन्होंने कहा भाई चीखो मत, मैं आराम से इधर ही खड़ा हूं, मेरी तस्वीर ले लो, चीखो मत। तो बस वो बड़े गुस्से में आज आ गए। और जनाब ट्रेलर आया है नई फिल्म का, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया है जी पयान, जिसका थोड़ा उलझा है जिया बहुत सारे लोगों के साथ। माजिद भाई तो अक्सर कहते हैं लड़कियों को कि भाई मेरे घर, मेरे दिल में आराम से जाना, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं करने, इतना दिल इनका उलझ गया। अच्छा जी, तेरी बातों में उलझा जिया, ये जो है इसमें बड़ी ही मजे की लव स्टोरी है। इसमें दिखाया गया है कि शाहिद कपूर को प्यार हो गया है कृति सैनन को, जो कि एक रोबोट है। वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपस में, लेकिन उसको पता नहीं है कि शी इज नॉट फ्लैश एंड ब्लड। इस मूवी के अंदर जो है धर्मेंद्रा नजर आएंगे एज हिज ग्रैंड फादर, और इसकी फिर एक मेटर्नल आंट डिंपल कबाडिया भी नजर आएगी जो साइंटिस्ट है, वो आती है। कि सब लोग जब इसकी तारीफें कर रहे होते हैं तो उसको कुछ इस लड़की में ऑड लगता है, और वो शाहिद को बताती है कि भाई साहब ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है। तो शाहिद जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है कि एक रोबोट से वो कैसे प्यार कर सकता है। ये स्टोरी जो है ये इसको लिखा है और डायरेक्ट किया है अमित जोशी ने और आराधना शाह ने, और ये रिलीज होगी सिनेमाज में फरवरी 9 को। ठीक है जी मैम, ये ऐसे है। और पाकिस्तान के जो बड़े ही हाई प्रोफाइल जो क्रिकेट टीम के कोचेज हैं, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, एंड्रयू पटेक, ये सब के सब ने कहा है क्योंकि इनके रोल्स और पोर्टफोलियोज चेंज कर दिए गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में। ये किया गया था वैसे नवंबर 2023 में, तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, यू डोंट नीड अवर सर्विसेज। इन अप्रैल 2023 आर्थर वॉज अपॉइंटेड टीम डायरेक्टर, इसी तरह ब्रैडबर्न को हेड कोच, और साउथ अफ्रीका के जो पटेक हैं उनको बैटिंग कोच बनाया था लास्ट ईयर अप्रैल 23 को। आर्थर जो है वो हेड कोच रहे हैं टीम के 2016 से 2019 तक, जिसके के बीच में पाकिस्तान की टीम तो जो थी नंबर वन स्पॉट पे आ गई थी आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग के अंदर, और उसके अंडर जो है पाकिस्तान ने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता था। ब्रैडबर्न जो है वो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच रहे बिटवीन 2018 से 2020 के बीच में, उसके बाद इनको हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोच रोल दिया गया था अक्टूबर 2021 में। अंडर हिम ऑल्सो पाकिस्तान बिकेम नंबर वन टीम इन ODI टीम रैंकिंग। अच्छा, उन्होंने इनको टेस्ट टीम में आगे लेकर के आर्थर साहब, और जो ये हैं ब्रैडबर्न है ये ODI में टॉप पे लेकर गए थे। बहरहाल जी ये कह रहे हैं असी छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, असी नहीं खेल रहे थोड़े नाल, विक्टर भी लेके जा रहे हैं अपने नाल। ठीक है, और जनाब आपको बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है एंड हमारे नोवाक जोकोविच जो हैं वो भी राउंड वन राउंड टू जीत के थर्ड राउंड में अब पहुंच गए हैं। इसके अलावा जितने भी टॉप सीडेड जो प्लेयर्स हैं टेनिस में, कोको गॉफ, बारबोरा क्रेजोविका, बीट्रिक्स हद्दाद माया, जेनिक सिनर, एंड्रे पब्लेव, स्टेफानोस ट्रिस्पिस, ये सब लोग जो हैं ये अब सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद थी, जो ट्यूनिजियन 6 सीड ऑनस जुबेर हैं, वो कहते हैं जी कि एक स्कूल गर्ल से हार गई, 16 ईयर ओल्ड रशियन एंड रीवा जो है उससे ये 6-0, 6-2 से हार गई। और एक और जो आगे सेकंड राउंड में पहुंची है वो है अर्निया सबलेंका, उन्होंने भी जीता। तो ये है जी कहानी ऑस्ट्रेलियन ओपन की हमारे। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया था कि FIA ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन से हार गया था 6-1 से, आज चीना से जीत गया है, हमारे चीनी भाइयों से 2-0 से ये जीता है एट ओमान हॉकी स्टेडियम। और ये जो था फर्स्ट क्वार्टर, बड़ी इंटेंस बैटल रही हमारे चीनी भाइयों के साथ हमारी, लेकिन थर्ड क्वार्टर में फिर पाकिस्तान का जो है अबू महमूद, उसने जबरदस्त पेनल्टी कॉर्नर पे 42nd मिनट में गोल बनाया, पाकिस्तान को 1-0 की लीड दी। 51st मिनट में फिर पाकिस्तान के अब्दुल रहमान ने सेकेंड गोल किया, इस तरह से पाकिस्तान ने चीना को हराया, यानी कि चाइना को हराया 2-0 से। ठीक है जी, एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, क्या बात है जी, क्या क्या टैलेंट आते हैं। अगर आपने आज गेम देखी है, ये डेब्यूटांट हैं शमर जोसेफ वेस्ट इंडीज के, इन्होंने जिस तरह से टॉप की जो क्लास जो इनके ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है स्टीव स्मिथ एंड मार्कस लेबुशेन, उनको आउट किया इन टेस्ट इन एट एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया जो था वो 59-2 था एट स्टम्प्स ऑन सेकंड डे, उस्मान खाजा नॉट आउट एट 30, कैमरून ग्रीन एट 6, और इस लड़के ने ऑल टुगेदर 5 विकेट्स लिए हैं फॉर 94। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंग्स ने टॉस जीता था और वेस्ट इंडीज को बैटिंग के लिए कहा था। वेस्ट इंडीज के साथ भी इन्होंने डेवस्टेटिंग किस्म की दिखाई थी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने, और इनको 133 के ऊपर 9 इनके आउट कर दिए थे। फिर जोसेफ जो है उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, इसी लड़के ने जो बॉलर भी है बड़ा जबरदस्त, 36 बनाए ऑफ 41 बॉल्स। और ऑस्ट्रेलिया जो थी तो वेस्ट इंडीज जो थी उसको थोड़ा सा साता मिला, यानी कि वो 188 पे आई। अब जो सेकंड डे है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कम्प्लीटली किया डोमिनेट, जॉश हेजलवुड ने तो कमाल कर दिया, तीन विकेट्स लिए अपने पहले 4 ओवर्स में। वेस्ट इंडीज ने अपना डे जो फिनिश किया है वो 4-18, यानी 18 रन्स पे 4 उन्होंने विकेट्स अपने गंवा दिए हैं इन 8 ओवर्स। इससे पहले ट्रेविस हेड जो थे उन्होंने 119 बनाए थे टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया गेट 95 रन लीड। तो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग है 283 और वेस्ट इंडीज की है फर्स्ट इनिंग 188 और सेकेंड इनिंग है 73-6। तो बस चांस नहीं है जीतने का बिल्कुल।
ये थी हमारी आज की खबरें, थैंक यू सो मच शरद जी,
थैंक यू भाई,
कल अभी मैं आपको ले चलता हूँ प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए, बख्या की बातें कल इंशाल्लाह, उस वक्त तक के लिए इजाजत। اللہ حافظ.
का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोनैन।
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਵਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773 ਯਾਨੀ 6472903773।
ਲੋ ਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਹੁਣ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਟਨ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ $4,90,000 ਚ ਤੇ GTA ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਡੀਅਮ ਤਾਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਮਿਲਟਨ ਫਿਊਚਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। GTA ਦੇ ਉਜਵਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ .ca ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਟੋਡੋ, ਦ ਸਿੰਗਸ ਆਰ ਬੈਕ।
ਸਫ਼ਰ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦ ਮੋਰ ਫੈਸ਼ਨ,
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲਾਂ।
ਮੋਰ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ,
ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸਭ ਕੁਝ।
ਐਂਡ ਮੋਰ ਡਰਾਮਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਯੂ ਇਨ ਸਟਿਚਸ।
ਘਾਟਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਊ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਡੇ, ਵਾਚ ਫ੍ਰੀ ਔਨ CBC ਜੈਮ।
ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਬਰਫਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨੋ ਪਲੋਰ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ 311 ਐਪ ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ brampton.ca/snow ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com। ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।